लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि सभी लोग मानव तस्करी, वेश्यावृत्ति और हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति उदार एकात्मता प्रदर्शित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, दर्पण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम अपने रोज दिन के जीवन में ना जाने कितनी बार इच्छा और अनिच्छा से दर्पण के सामने खड़े होकर अपने को निहारते हैं। दर्पण जिसके सामने हम खड़े होते हमें हमारे बाह्य रूप और सौंदर्य को दिखलाता है। हम दर्पण के सम्मुख खड़े होकर अपने को देखते और अपना श्रृंगार करते हैं। सुबह, दोपहर या शाम जब भी हमें समय मिलता हम निश्चित रूप से अपने प्रतिरूप को देखते हैं। हम चाहे घर से बाहर निकलने वाले हों या बाहर से घर के अंदर प्रवेश करते हों, एक बार तो हम जरूर ही अपने को दर्पण में निहारते और अपने आप को देखते हैं। श्रोताओ, 6वें सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार हमें आज अपने आंतरिक अर्थात आध्यात्मिक चेहरे को झांक कर देखने का निमंत्रण देता है। आइए हम अपने को यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार रूपी वचनों के दर्पण में देखने की कोशिश करें। उनके सुमधुर वचनों के अनुरूप हमारा आंतरिक रूप कैसा है? क्या हम अपने को उनके वचनों के अनुसार सुंदर और स्नेहिल पाते हैं? क्या हम वास्तव में अपने को आध्यात्मिक रूप में आकर्षक पाते हैं?
ईसा उनके साथ पहाड़ी से उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग का राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुम से बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक करोगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे।
श्रोताओ, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें उस ईश्वरीय कृपा से पोषित करे जिससे हम अपने को आंतरिक रूप में सुंदर और आकर्षक बना सकें, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक रूप ही हमारे चेहरे रूपी दर्पण में निखरता हुआ प्रकट होता है। श्रोताओ, आज का पहला पाठ हमें अपने आध्यात्मिकता की गहराई में जाने हेतु ईश्वर में अपने विश्वास को प्रगाढ़ बनाने का निमंत्रण देता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है। वह कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। श्रोताओ, जब हम अपने जीवन में जीवनदाता ईश्वर पर विश्वास और भरोसा करते हुए उन्हें अपना जीवन समर्पित करते, तो हमारे जीवन की असंख्य कठिनाइयों में भी हम हमेशा सदाबहार बने रहते हैं। यह इसलिए कि ईश्वर में हमारे विश्वास की जड़ें हमें मजबूती प्रदान करती और हम अपने दुख तकलीफों और मुसीबतों में भी जीवन में अडिग बने रहते हैं। हम अपने विश्वास के कारण जीवन की कठिनाइयों के बावजूद निरंतर बिना हताश और निराश हुए सानंद अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। दुख रूपी आंधी और कठिनाइयां रूपी तबाही हमें झकझोर देती हैं, लेकिन वे हमारे जीवन के मार्ग को अवरोध नहीं कर पाती हैं। हम झुकते लेकिन टूटते नहीं, क्योंकि ईश्वर में विश्वास की हमारी जड़ें हममें आशा का संचार करती हैं। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति जो ईश्वर में अपने विश्वास को कमजोर पाता, ईश्वर में भरोसा रखने के बदले मानव में अपने स्वयं की शक्तियों में अपने को आश्रित रखता, वह अपने जीवन में छोटी कठिनाइयों के आने पर भी उन्हें सहन करने में अपने को असक्षम पाता है। वह एक कमजोर जड़ वाले वृक्ष की भांति मुरझा जाता है, उसके पत्ते कुमला जाते और कई बार तो वह अपने जीवन से टूट भी जाता है। श्रोताओ, विश्वास के बिना हमारा जीवन अपने में बिना जड़ों की वृक्ष की भांति है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरुंथियों को इसे विश्वास का मर्म समझाते हैं। वे उन्हें कहते हैं कि हमारी शिक्षा का आधार येसु ख्रिस्त हैं, जो मृतकों में से पुनर्जीवित हुए हैं। वे कुरुंथियों के बीच मृतकों के पुनरुत्थान पर उठे वाद विवाद का स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि यदि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता तो येसु मसीह भी जी नहीं उठे, और यदि येसु ख्रिस्त जी नहीं उठे हैं तो हमारा धर्म प्रचार और हमारा विश्वास सब कुछ व्यर्थ है। श्रोताओ, आज का सुसमाचार येसु में हमारे विश्वास को एक दूसरे रूप में व्यक्त करता है, जो दुनिया की रीति के एकदम भिन्न है। येसु अपने अनुयायियों और अपने शिष्यों को स्वर्ग राज्य के बारे में बतलाते हैं, और वहां ले चलने हेतु वे हमारे जीवन का अंग बनते और हमारे बीच आते हैं। वे हमें स्वयं अपने जीवन के मनोभावों की चर्चा करते और हमें अपने जीवन में उन मनोभावों को धारण करने का आह्वान करते हैं। श्रोताओ, येसु अपने पीछे आने वालों को, अपने अनुयायियों को धन्य कहते हैं, क्योंकि वे उनकी तरह दरिद्र हैं। अपनी दरिद्रता के कारण जो इस जीवन में रोते हैं, वे उनके लिए सांत्वना के शब्द उच्चारित करते हुए कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग का राज्य प्राप्त होगा। येसु अपनी शिक्षा ग्रहण करने वालों से कहते हैं, तुम इसलिए अपने में आनंदित हो क्योंकि दूसरे तुमसे मेरे नाम के कारण अत्याचार घृणा और तिरस्कार करते हैं। इस अत्याचार घृणा और अपमान के कारण तुम्हें स्वर्ग राज्य में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। श्रोताओ, सुसमाचार में आज की धन्य बातें हमें येसु के जीवन की घटनाओं का वृतांत प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने हमारे कारण अपने को दीनहीन बनाया। वे हमारे लिए बहिष्कृत और अपमानित हुए, फिर भी उन्होंने अपने पिता के प्रेम के कारण सारी मानव जाति के लिए दुख उठाते हुए घोर मृत्यु स्वीकार किया तथा अपने पिता को विश्वासी और प्रेमी पुत्र होने का प्रमाण दिया। वे हम सबों से भी उसे विश्वास भरोसे की मांग करते हैं। हमारे जीवन की दुख तकलीफें और मुसीबतें हमारे लिए वे मापदंड बनते हैं, जिनके द्वारा वे हमें अपने लिए परिशुद्ध करते, जिससे हम उनके साथ अनंत राज्य के भागीदार बन सकें। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा निवेदन करें कि हम उनके बेटे येसु ख्रिस्त पर अपना विश्वास पुख्ता बना सकें, जिससे हमारे जीवन के द्वारा उनके प्रेम की झलक दूसरों को मिलती रहे।
दीप है यीशु की ज्योति के। जहां में जलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो
हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार 16 फरवरी को वेटिकन स्थित क्लेमेंटीन सभागार में अगुस्टिनियानो बैटिस्टिक शिक्षण संस्थान की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर संस्थान के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से मुलाकात की। संत पापा ने कहा, मैं जुबली के इस अवसर को आप लोगों के साथ मनाने के लिए खुश हूँ। सर्वप्रथम इसका अर्थ है अगुस्टिनियानुम आज जो कुछ है तथा अर्ध शताब्दी पूरी कर ली है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। किंतु यह हमें वर्तमान परिस्थिति में पीछे मुड़कर कृपाओं के उन क्षणों को भी देखने हेतु प्रेरित करती है। प्रज्ञा की खोज में कार्तिक परंपरा के रक्षक के रूप में अगुस्टिनियानुम की स्थापना की गई थी, खासकर कलीसिया के धर्माचार्यों की परंपराओं की रक्षा के लिए। कलीसिया के लिए यह योगदान महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता हमेशा रही है। किंतु विशेषकर इस समय, जैसा कि संत पॉल छठवें कहते हैं, कलीसिया के धर्माचार्यों की ओर ध्यान दिए बिना, जो ख्रिस्तीय धर्म के विकास का हिस्सा है, इसके बिना वेटिकन द्वितीय ख्रिस्तीय एकता समिति की इच्छा, बाइबल नवीकरण, धर्म विधिक सुधार एवं ईश शास्त्रीय खोज को लागू किया जाना संभव नहीं है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने सन 1982 में संस्थान का दौरा किया था तथा उन्होंने कहा था कि धर्माचार्यों के स्कूल में अपने को डालने का अर्थ है ख्रिस्त को अधिक अच्छी तरह से जानना और लोगों को भी अच्छी तरह से समझना, और यही ज्ञान कलीसिया को मिशन में बड़ी सहायता प्रदान करता है। अतः संत पापा ने संस्थान के शिक्षकों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपने मूल एवं कर्तव्यों के प्रति वफादार रहें और बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों को प्रदान करने की प्रतिबद्धता में धीर बने रहें, जो विद्यार्थियों को कलीसिया तथा इस समय की चुनौतियों का सामना विवेकपूर्ण तरीके से करने हेतु तैयार करेगा। संत पापा ने कहा कि यह सेवा सुसमाचार प्रचार एवं ईश्वर की पूर्णता की ओर मानव परिवार के विकास को प्रोत्साहन देने में मदद देता है। संत पापा फ्रांसिस ने प्रवासियों के स्वागत के लिए निरंतर ध्यान आकर्षित करने हेतु 15 फरवरी को रोम के निकट सैक्रोफानो के भाईचारा आवास केंद्र में ख्रिस्त्याग अर्पित किया। इताली कारितास के शरणार्थी फाउंडेशन एवं जेसुइट सोसाइटी द्वारा संचालित अस्ताली शरणार्थी केंद्र ने शरणार्थियों के स्वागत की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए 3 दिवसीय सभा का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन संत पापा फ्रांसिस ने शुक्रवार को ख्रिस्त्याग अर्पित कर की। अपने उपदेश में संत पापा ने पाठ पर चिंतन करते हुए डरो मत पर प्रकाश डाला। संत पापा ने निर्गमन ग्रंथ में लाल समुद्र पार करते हुए इसराइलियों के चित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह हमें इस समय की प्रतिकूलताओं से परे देखने का निमंत्रण देता है, ताकि हम भय से मुक्त हो सकें तथा प्रभु की मुक्ति एवं रहस्यात्मक कार्य पर भरोसा रख सकें। संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिए गए पार पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा कि यीशु के शिष्य यीशु को पाने पर चलते हुए देखकर डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, ढाढ़स रखो, डरो मत, मैं ही हूँ। संत पापा ने प्रतिभागियों को स्मरण दिलाया कि उनकी सभा की विषय वस्तु है भय से मुक्त। उन्होंने कहा कि बाइबल किन घटनाओं के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं तथा हमें भय से मुक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं।
मनुष्य, जिसे ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कहा जाता है, आरंभ से ही अपनी मौलिक विशेषताओं को साथ लेकर जन्म लेता है और अपनी चेतना का क्रमशः विकास करते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। संत पापा फ्रांसिस ने 16 फरवरी को ट्वीट प्रेषित कर हर किसी को अपने व्यक्तिगत विशेषता को जीने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, यीशु हमसे अपने जीवन को रचनात्मक तरीके से जीने की मांग करते हैं, जो हर किसी के लिए संभव है। उधर भारत की कैथोलिक कलीसिया ने गुरुवार को कश्मीर में देश के अर्धसैनिक पुलिस पर घातक आतंकवादी हमले की निंदा की है, जिसमें 44 सैनिकों की मृत्यु हो गई, और उन परिवारों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटों से भरे एक वाहन को भारत प्रशासित कश्मीर के मुख्य शहर श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व फोर्स पुलिस की एक बस से टक्कर मार दी। बस लगभग 70 वाहनों के काफिले का हिस्सा थी, जो लगभग 2500 सैनिकों को आराम क्षेत्र में ले जा रही थी। पाकिस्तान स्थित इस्लामिक आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली है। CRPF भारतीय सेना के साथ कश्मीर में 30 साल से विद्रोह को रोकने के लिए काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी के बीच कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है। भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के महासचिव धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनहास ने वाटिकन संवाददाता रोबिन के साथ हुए साक्षात्कार में 14 फरवरी के हमले को नासमझ हिंसा बताया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए भारत में बहुत दुखद दिन है। यह उन 44 और अधिक परिवारों के लिए एक दुखद दिन है जिन्होंने अपने जवान बेटों को खोया है। साथ ही हम घायल हुए जवानों के लिए भी दुखित हैं। भारतीय धर्माध्यक्ष राष्ट्र के उस दर्द को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो कभी नहीं होना चाहिए था, देश उस पीड़ा से गुजर रहा है। CBCI महासचिव ने चेतावनी दी कि हिंसा से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि हिंसा से हिंसा ही बढ़ेगी। CBCI वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक अलग बयान में भारतीय धर्माध्यक्षों ने कश्मीर में हमारे सैनिकों पर निरीक्षण और कायरतापूर्ण हमले की निंदा की है। CBCI ने बयान में कहा, भारत की कैथोलिक कलीसिया हमारे सैनिकों की मृत्यु का शोक मनाती है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। धर्माध्यक्षों ने कहा कि वे उन परिवारों के समीप हैं जिन्होंने अपने प्रिय बेटों को खो दिया है, और उनके लिए इस कठिन और दुखद समय में सांत्वना पाने हेतु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धर्माध्यक्षों ने बहादुर सैनिकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्यार भरे आलिंगन में सौंप दिया, जिन्हें ईश्वर अनंत शांति प्रदान करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने भी भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की कड़ी शब्दों में निंदा की है। साथ ही मृतकों के परिवारों, भारत सरकार और स्थानीय लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।